భూమిమిలితంగేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాలయై కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాలయై కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. सप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कल में हम लोग अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन कर दें. तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुभास कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के भी चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने थोड़े ही दिनों में विश्व भर में भगवान नाम का कीर्तन सर्वत्र प्रचार किया, जिन्होंने लोगों का मद्यमांस मैथुन सब छुड़ाकर भगवान की भक्ति में जिन्होंने नियुक्त किया उनका कल्याण किया. तत्पश्चात मैं अपने कल के विषय पर आ रहा हूं. मैंने कल बतलाया प्राणी मात्र का चाहे जगत में कहीं भी हो, इस जगत के बाहर भी हो, चाहे पेड़ पौधे के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, देवता के रूप में हो, सबके सब आराध्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं नंदनंदन ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर हैं. जितने भी देवता देवी लोग हैं सब इन्हीं की आराधना करते हैं. और की तो बात क्या, दुर्गा काली गणेश शंकर जी ब्रह्मा जी सभी लोग इन्हीं की ही आराधना करते हैं और जगत में इन्हीं की ही पूजा का प्रचार करते हैं. इस ब्रह्म का एक बड़ा ही सुंदर मनोहर रूप है जिसके शंकर जी ब्रह्मा इत्यादि जी मन ही मन में ध्यान अपने हृदय में करते हैं, किंतु वो भी बड़ा मुश्किल होता है. या ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुक्कई रालक्षितोन सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यावशीकरण चूर्ण अनंत सत्य. तो वो ध्यान करते हैं तभी उनका चरण कमल ध्यान में नहीं आता. ऐसे ये हैं, ब्रज में गोप बालकों के साथ में खेले, ये गैया वेद की ऋचाएं हैं, उनको चराया पुष्ट किया और गोप बालकों के साथ में खेले, नंद और यशोदा का बात्सल्य स्नेह चखा और गोपियों के भी चरण धरे, उनके वशीभूत हो गए, उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सके वो कृष्ण. ऐसे ये भगवान हैं. कुछ लोगों की ये शंका है, यहां पर भी कुछ लोगों की शंका हो सकती है, भगवान निराकार हैं, उनका आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है. जब जब भक्त लोग उनको पुकारते हैं तब हो सकता है कि वो नर रूप धारण करके जगत में आते हैं और फिर नर को छोड़ करके चले जाते हैं, किंतु यह बात गलत है. भगवान नर रूप धारण नहीं करते, उनका वह नर रूप ही नित्य है. वो अपने धाम से उसी रूप में जगत में उतरते हैं, इसलिए उनका नाम अवतार है. कृष्ण ये नित्य रूप उनका है, राम उनका यह नित्य रूप है, ये कभी ऐसा नहीं जो वो निराकार है आपसे रूप धारण कर लिया, वही सगुण है वो भी निर्गुण है। तुलसीदास जी ने ऐसा वंदना किया, वही निर्गुण इसलिए हैं कि जागतिक गुणों से ऊपर वाले हैं, और सगुण किस लिए, अखिल कल्याण को कल्याणकारी जो गुण हैं उन सब वही उनमें रहते हैं, नित्य काल विराजमान रहते हैं, इसलिए वे सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं। लोग समझते हैं कि निर्गुण माने निराकार हैं और सगुण माने है जो रूप धारण कर लिया, ऐसी बात नहीं। प्रभु का रूप नित्य है, कभी कभी दया करके इस जगत में वो उतरते हैं उसी रूप से, इसलिए त्रेता युग में भी सतयुग में भी उसके पहले भी त्रेता सतयुग में बस कृष्ण का वही रूप है जो पहले लेकर के आते हैं। करोड़ों बार कृष्ण जगत में आए हैं किंतु रूप उनका वही, अलग नहीं। राम का वही रूप जो उनका नित्य जगत में है उसी लेकर के उतरते हैं। ये दो नहीं है, कल ही मैंने बतलाया था, ये दो नहीं है, एक ही है। चंद्रकलाओं की भांति एक ही ये प्रभु हैं। उपासना के दृष्टि से, तारतम्य से, एंगल ऑफ उपासना विजन वो ऐसे दिखते हैं, नहीं तो एक ही है। चंद्र एक आकाश में है किंतु चंद्र की और पृथ्वी की परिक्रमा इत्यादि के कारण जब पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है तो चंद्र में 16 कलाएं एक एक दिन में बढ़ती और घटती दिखती हैं, किंतु चंद्र अपने आप में सब समय पूर्ण है। उस स्थान में हम बहुत ऊंचे चले जाएं जहां पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती है तो वो चंद्र पूरा दिखेगा। इसलिए जब कृष्ण में उपासना के वजह से, जबकि उनमें वात्सल्य और मधुर स्नेह नहीं होता, उसको नहीं प्रकट करते रस, तब वो राम के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं कुछ रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह एंगल ऑफ भक्ति है, प्रेम है, किंतु है एक ही तत्व, अलग अलग नहीं है। इसलिए उनका रूप है केवल भारतीय शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में माना गया, ऐसा नहीं। हम तो इसको पीछे हम दिखलाएंगे आप लोगों को, पहले दूसरे बाइबल में, कुरान इत्यादि में जो लिखे हैं उसके अनुसार मैं आपको बतला रहा हूं। बाइबल में भी लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के अनुसार में गॉड ने मनुष्यों को बनाया। यदि उनका रूप नहीं है तो कैसे बनाया, क्या बाइबल से इस लाइन को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। विशेष करके जो यीशु मसीह हैं, यीशु नाम है ना क्या, जेसस हैं, ये क्राइस्ट के बेटे हैं इसलिए जेसस क्राइस्ट कहलाते हैं। ये क्राइस्ट कौन है, कृष्ण से, कल मैंने बतलाया था। इसलिए जब कि बेटा का रूप है तो बाप का बेटा रूप नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए जरूर उनका रूप है। इसलिए मैंने कल बतलाया जब बाप में यदि रूप नहीं है तब बेटा में रूप कहां से आ गया, इसलिए विश्व सब उन्हीं से निकला है, तो विश्व में जितने भी रूप हैं सब उनमें है, किंतु हम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए साधन के द्वारा जब हम उनको देखेंगे, हमारी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी, तो देखेंगे कि बड़ा सुंदर उनका दिव्य रूप है। हमारे शास्त्रों के अतिरिक्त मुस्लिमों के कुरान में भी है ऐसा, वो भी अस्वीकार नहीं कर सकते। इन्ना लहा खलाका मैन सूरत ही, सूरत मैंने क्या, रूप, खुदा का रूप है, खुदा के बंदे होते हैं। यदि खुदा के बंदे हैं तो प्रभु का रूप नहीं होगा, प्रभु का रूप नहीं होगा। वे सृष्टि के बाद में, प्रलय होने के बाद में सब बंदों को बुला करके उनका विचार करते हैं, कौन विचार करता है, उनके कर्म के अनुसार में फल देता है, तो उसका रूप तो जरूर होगा, उसकी प्रतिनिधि सभा होगी, मंत्रिमंडल होगा, सब उनकी व्यवस्था है, उसी छाया ये जगत है, इसलिए उनका रूप जरूर मानना पड़ेगा, है ना। नहीं तो रूप की पटेंसी यदि ब्रह्म में नहीं है तो फिर कैसे होगा, ये सब कैसा कहां से आएगा। आम की गुठली से ही आम पैदा होता है, चावल का पौधा लगा दो बीज गेहूं जो, तो उससे आम नहीं हो जाएगा, आम से इमली नहीं होगी, आम की गुठली से आम ही होगा। तो जब आम से पेड़ हुआ है तो समझो उस गुठली में उस चीज रूप की पोटेंसी है, अभी अभिव्यक्त न थी। जहां मिट्टी में डाल करके पानी दो तो आम से आम का पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही जितने भी जीव हैं ये सब यदि प्रभु में नहीं रूप है तो ये कहां से आया। हम अपने आप शास्त्रों से भी बतला रहे हैं। दूसरी बात, ये बौद्ध धर्म हमारे हिंदू धर्म से ही, भारतीय संस्कृति से ही निकला। उन्होंने भगवान का ध्यान नहीं मिला तो उन्होंने कहा यह भगवान का रूप नहीं है, ये शून्य से जगत पैदा हुआ, इसलिए उसको शून्यवाद कहते हैं। और मरने के बाद में सब जगत का प्रलय होने पर शून्य में मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ नथिंग से ये सब की सृष्टि हुई। किंतु बात ऐसी नहीं, नथिंग से आज यदि सृष्टि होती तो कितनी सृष्टियां हो जाती, कितने आदमी जैसे कितने ये सब हो जाता। किंतु आज से मनुष्य से और दूसरों प्राणियों से कोई दूसरा चीज नहीं हो सका। लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, मंकी से हम नहीं बने हैं, हम बानर से मनुष्य नहीं हुए हैं, पहले से ही मनुष्य है। भगवान ने ऐसी सृष्टि की है, इसलिए ये डार्विन की थ्योरी एकदम गलत है। कुछ दिनों के बाद में देखेंगे एकदम गलत है। इसलिए हमारे बौद्धों में देखिए, यदि उनका रूप नहीं तो बुद्ध देव का रूप कैसे बनाया, उनकी पूजा क्यों क्यों करते हैं। जैनियों में देखेंगे, जैनी लोग भी 20-25 फुट की मूर्ति रखते हैं। क्यों रखते हैं, यदि भगवान का रूप ही नहीं है तो चर्च बनाने की जरूरत क्या, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या, खुले आकाश में और उनका पूजन करके पूजन करें तो उनका आकार है ही नहीं है तो मस्जिद में कहां से आएंगे। इसलिए ऐसी बात नहीं, हमारे जो पूर्व युग सनातन धर्मावलंबी हैं भगवान के सनातन रूप को मानते हैं, सच्चिदानंद रूप को। और सच्चिदानंद क्या है, सत मने उनका यह शरीर है नित्य और सत्य है, परम सत्य है, त्रैकालिक सत्य है। और चित, चित माने ज्ञान, ज्ञान माने ऊपर बढ़कर के भाव प्रेम बन जाता है, वो सबके आधार है। और आनंद जिसके द्वारा जगत के सब लोगों को आनंद देते हैं और स्वयं आनंदमय है और आनंद स्वरूप भी है। यदि उनमें आनंद नहीं होता तो ये प्राणी कहां से आनंदित हो सकते थे। यदि ब्रह्म हृदय में न रहे, आत्मा निकल जाए जरा परमात्मा से देखो तो शरीर कहां रह जाए, कहां आनंद है। इसलिए आनंद यदि है तो उन्हीं में आनंद। एक समय की बात है, सत्यु की बात है, तुलसी की रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को लिया गया है। एक बार शंकर जी सती को लेकर के, अपनी पत्नी सती जी को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत में था, समुद्र के किनारे। अभी भी वो अगस्त आश्रम है। हम लोग जब दक्षिण भारत में तीर्थों का दर्शन करने के लिए हम गए थे गुरु जी के साथ में, अगस्त ऋषि के आश्रम को देखा है हमने। उन्हीं का दूसरा नाम कुंभज भी है। तो वो शंकर जी उनके पास में गए और दोनों मिलकर के भगवान रामचंद्र जी की कथाओं का वर्णन करते हुए, तत्वों का वर्णन करते हुए बड़े आनंद से कुछ दिन तक वहीं पर रहे शंकर जी अपनी पत्नी के साथ। कुछ दिनों के बाद में, हरि कथा होने के बाद में वो लौट रहे थे। और इतने में रामचंद्र जी महाराज दशरथ जी का आदेश और कैकेयी का आदेश पालन करने के लिए दंडकारण्य में ऋषि जैसा जटाजूट बनाकर सीता जी और अपने भैया लक्ष्मण जी को लेकर के घूम रहे थे। इतने में रावण एक दिन मारीचि की सहायता से सीता जी को हर ले गया। अब तो राम उनके विरह में तड़फड़ा रहे और हाँ सीते प्रिय तुम कहाँ हो, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और पेड़ों से भी उनको अंक में लेकर कहते हैं कि हमारी प्रिया जी को देखा, वो जाती थी तो तुम्हारे यहाँ से फूल चुनती थी, गोदावरी तुमने सीता जी को देखा, हिरणों से पूछा हिरण वो तुम्हारी तो बड़ी प्रिय थी, हमारी सीता जी को देखा, और रो रो करके विलाप कर रहे हैं। उसी समय शंकर जी सती जी को लेकर के सोचा भगवान दंडकारण्य में पधारे हैं और विलाप कर रहे हैं, उनका दर्शन हो जाए तो अच्छा है, ये कहकर उनके दर्शनों के लिए दंडकारण्य में पधारे। वहां देखा जो राम तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे, क्या करूं ना करूं कुछ समझ नहीं रहे, उनके पीछे पीछे डोल रहे हैं। शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, एकदम प्रेम में भर गए, उनके रोमांच हो आए और दूर से उनकी लीला में कोई व्यवधान न पहुंचे, बाधा न पहुंचे, इसलिए दूर से उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी दूर से ही सौ स्तुति की। और स्तुति करके जब लौटने लगे तो सती जी ने उनसे कहा, प्रियतम आप किसकी वंदना कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम अपने परमा आराध्य पर ब्रह्म उनको मैं सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहा हूं, वह हमारे आराध्य देव हैं। सती जी ने कहा जो समस्त संसार का कारण है, जो कि अज है, अज माने जिसका जन्म नहीं है, जो समस्त कारणों से अतीत हैं, अनीह हैं, अनीह माने संसार से कोई आसक्ति नहीं, जो कि गुणों से अतीत हैं, व्यापक ब्रह्म हैं, व्याप्नोति ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, ऐसा कोई भी प्राणी और पदार्थ नहीं है जिसमें वो नहीं है, ऐसे प्रभु ये नररूप लेकर के इस जगत में आए हैं, तो भी यदि नररूप लेकर के विष्णु भी आए तो वो अज्ञानी नहीं होते। उन्हें मन में सोचा कि जैसे शंकर जी सब कुछ जानने वाले हैं तो इनको अज्ञान से कहां गया, ये दशरथ महाराज का लड़का ये कैसे व्यापक ब्रह्म हो सकता है, ये अपनी स्त्री के मोह में बिल बिला करके रो रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है सबसे और रो रहा है, अज्ञानी ये ब्रह्म कैसे हो सकता है और ब्रह्म का रूप कैसे होगा, वो तो व्यापक है, यदि एक शरीर धारण करेगा तो सब जगह कैसे व्याप्त हो सकता है, इसलिए ब्रह्म कदापि नहीं हो सकते। किंतु शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सब देवता लोग इसको मानते हैं, ये सर्वज्ञ हैं, तो ये झूठ तो बोल नहीं सकते, और उधर में व्यापक ब्रह्म ये जन्म कैसे ले सकता है और कैसे रूप हो सकता है, इसको अज्ञानता कैसे, ये नहीं जानता जय रावण हर करके ले गया है, मैं तो जानती हूं, फिर ये नहीं जानता और रो रहा है, तो ये ब्रह्म कैसे होगा, शंका आई। जब शंका हुई शंकर जी समझ गए, समझाया देखो शंका मत करो, तुम तो हमको गुरु भी मानती है ना पति के साथ साथ में, गुरु के बातों में अविश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत तरह से समझाया उनके चित्त में नहीं आया। शंकर जी ने देखा ये भगवान की ऐसी विचित्र माया है जो बड़े बड़े लोगों को नारद तक को भी मोह में डाल देती है, इसलिए क्या करूं, समझाने पर नहीं समझ रही, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, अब तर्क करके मैं क्या करूंगा, अब देखें प्रभु की जैसी इच्छा होगी, ऐसा समझ करके एक वट के पेड़ के नीचे में बोले, प्रिय तुमको यदि बोध नहीं होता है, हमारी बात नहीं अच्छी लगती और स्व विश्वास नहीं है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, यहीं पर तो है, परीक्षा ले लो और मैं तब तक के लिए इसी वट वृक्ष पर यही छाया में बैठ रहा हूं, तुम जल्दी से लौट आना परीक्षा लेकर के, वो जल्दीबाजी भी नहीं है, परीक्षा तो ले लो, ऐसा कह करके शंकर जी बैठ गए और पार्वती को उनको सती जी को कहा जाओ पर। उन्होंने सोचा चली गई, सोचे कैसे परीक्षा ली, परीक्षा एक अच्छी बात होगी ये कि मैं यदि किस प्रकार से सीता जी का रूप बना लूं और उसके सामने जाऊं तो यदि मनुष्य होगा तो हाँ सीते तू मिल गई और हमको आलिंगन करने के लिए आएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मनुष्य है ब्रह्म नहीं है, और यदि सचमुच में ब्रह्म हुआ तो हमें पहचान जाएगा यह मैं सती हूं, शंकर जी की पत्नी हूं। ऐसा सोच करके क्षण मात्र में ही अपना सीता जी का रूप, वैसा ही श्रृंगार जैसे कि रावण हर करके ले गया था, वैसा ही एकदम रूप बना करके और सामने में खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने देख करके भी देखा नहीं और उस ओर से रोते हुए दूसरी तरफ में चले गए, तो ये भी दूसरी तरफ से वहीं पर सामने पहुंच। जिधर राम रोते हुए जाते हैं उधर ही वो जाकर के खड़ी हो जाती हैं। तो राम ने हाथ जोड़ करके उनको देख करके प्रणाम किया, माता जी आपको मेरा सश्रद्ध प्रणाम है। आप अकेली डोल रही हैं, हमारे वृष केतु शंकर जी किधर गए? आपको अकेली तो नहीं घूमनी चाहिए थी। अब सुनते ही उनके होश उड़ गए, कैसे जान लिया, समझ लिया हमको, तो जरूर ये ब्रह्म होगा। किंतु अभी शंका पूरी रूप से नहीं गई, किंतु ये जान नहीं सकता था ये जरूर ब्रह्म है, ये तो ठीक है। और वो लौटी शंकर जी के पास में जा रही, उनको क्या जवाब दूं, कैसे मैंने परीक्षा ली क्या थी। इतने में राम को उन पर दया आ गई, इसको कुछ अनुभव करा दूं, ये भक्त तो है, इसको माया थोड़ी सी व्याप गई, इसलिए थोड़ी सी अपनी इसको प्रभाव जरा दिखला दूं। ऐसा सोचते ही जो वो माया के द्वारा उन्होंने ऐसा किया, जो सती जी जो जा रही थी सोच रही थी ये मैं क्या करूं, शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी, नहीं मैंने तो ये काम बहुत गलत किया, नहीं ऐसे सोचती जा रही। इतने में देखा जिधर देख रही हैं उधर ही में राम लक्ष्मण और सीता। फिर इधर देखा जो कुछ दिखाई पड़ने लगा, इधर उधर बाहर भीतर सर्वत्र दिखा दिया राम लक्ष्मण सीता, और सीता जी उनके साथ में मुस्कुराती हुई, और सब जितने देवता लोग हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, विष्णु भी कोटि कोटि, ब्रह्मा कोटि कोटि मुख वाले ब्रह्मा, और उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं। अब तो देख करके और भी चकित हो गई, शंकर को भी देखा वो भी उनकी स्तुति कर रही हैं। फिर आंख ऐसे मलाड जैसे देखें तो जो मैं सपने देख रही हूं क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता। जब फिर आंख खोल करके देखा तो देखा जय राम वही करें हासिते हा प्राण प्रिय साथे, और रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं। अब तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो लौटी, शंकर जी वहां पर बैठे हुए थे, शंकर जी के समीप में जब गई तो शंकर जी ने उनसे पूछा उत्कंठापूर्वक, प्रिय कुछ परीक्षा आपने की? यदि परीक्षा की तो हमको सच सच बतला दो। तो वो डर गई कुछ, बोली जीनाथ मैं क्या उनकी परीक्षा लूंगी, आप मेरे गुरु हैं, आपने कह दिया बस, अब मैं समझ गई कि ठीक वो परब्रह्म है। झूठ बोली, गुरु से कदापि झूठ मत बोलो। एक विषय को छिपाने के लिए तुम 10,000,000 बार झूठ बोलेगा। एक तो गुरु के प्रति विश्वास ऐसा जो गुरु कहते जो ठीक है, गुरु भी ऐसा होना चाहिए, गुरु जैसे तैसे नहीं होने चाहिए। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। अरे एक पैसे की हड़िया लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो एक लकड़ी से बजाते हैं, ठन ठन कर रही कि खन खन कर रही है, खन खन करती है तो फूटी हुई है, मतलब दो पैसे की हड़िया, और ठन ठन करती है तो ले आओ। प्रत्येक चीज को देखते हैं हम लेते समय में, और गुरु करते समय जो कदिया जैसे ये गुरु है महा मुक्त गुरु हैं, पैसे के लिए दौड़ते हैं दिन रात, 10 स्त्रियों के पीछे भागते हैं, शास्त्र की दो एक बातों को रट लिया है केवल, और तोते जैसे बोलते हैं ये गुरु गुरु नहीं है। भगवान की अनुभूति होगी, सारी शंकाओं को दूर करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणों को वो जानते हैं और निरंतर भगवान नाम करते हैं। पैसे के प्रति आसक्ति नहीं होगी, यदि है तो उसको गुरु मत बनाओ, खबरदार। यदि पैसा चाहता है, यदि पैसा भी मिला तो उसको भगवान और भक्तों की सेवा में लगा देगा साथ ही साथ में, और उसको किसी विषय में शंका नहीं होती, कभी उसका पतन नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। जो गुरु हो गया पतन हो गया तो गुरु क्या रहा, इसलिए गुरुओं का पतन नहीं होता। इसलिए गुरु जी से झूठ बोली, एक तो पहले तो उनके बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पहला अपराध, और दूसरी बात गुरु के वचनों में कभी अविश्वास न हो, नहीं तो गुरु से वो शिष्य गिर जाएगा। और दूसरी बात गुरु से झूठ मत बोलो, हृदय को खोल करके रखो, यदि कोई चीज अपराध भी हो गया तो उनके सामने रख दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तीनों ने झूठ बोल दिया, ये नाथ मैं क्या उनकी परीक्षा लूंगी, आप जो कहा वो ब्रह्म ही है। शंकर जी ने ध्यान लगा, देखा अरे ये तो सीता जी का रूप धारण किया, वो तो मेरी आराध्या देवी है, मैया है, तो मैया का रूप बनाया इस तरीके से, इस पाप से तो उद्धार होना बड़ा कठिन है। अब इस शरीर से हमारा उनका संयोग पति और पत्नी के रूप में नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये हमारी मैया बन करके रहेंगी। बस मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि आज से इनको मैया को अपना बनाया और पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। जो ही उन्होंने मन में संकल्प किया शंकर जी, क्यों ही भगवान की वाणी हुई और आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई, शंकर आप भक्ति की मूर्ति स्वरूप हैं, वैष्णवों के आप जगत गुरु हैं, वैष्णवों में आपके सिवाय ऐसी कौन प्रतिज्ञा कर सकता है। शंकर जी ने सोचा हमारी प्रिया है और सब प्रकार से गुण है, इसे इसको छोड़ नहीं सकता, त्याग तो हमें कर देना चाहिए था, मैं त्याग नहीं कर सकता, किंतु साथ ही साथ अब पत्नी पत्नी का जो प्रेम था वो प्रेम अब नहीं रहेगा, उसको मैया के रूप में हमको ग्रहण करना पड़ेगा। देवताओं की जब पुष्प वृष्टि हुई तो सती जी ने उनसे पूछा, प्रिय प्रियतम आपने क्या प्रतिज्ञा की, तो वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप चलते आए और भगवान की लीला कथाएं उनको समझाते सुनाते हुए आए, कैलाश आश्रम में बैठ करके अपने आसन पर बैठ करके और समाधिस्थ हो गए और 88,000 वर्ष तक एकदम समाधिस्थ हो गए। अब इन्होंने देखा जैसे ये अब इस शरीर से मैं इनकी पति पत्नी के रूप में मैं नहीं सेवा कर सकती, हाँ है मैंने बहुत बड़ा भारी अपराध किया, गुरु के चरण में दो दो अपराध किए, बतलाइए ये कोई अपराध सा नहीं है, किंतु ये, और यदि कोई गुरु को धोखा दे, गुरु को मारे, गुरु की निंदा करे, तो उसकी क्या गति होगी, और यदि गुरु ही इसका पात्र है, वही करता है ऐसी निंदा का बात, तो भी उसकी निंदा मत करो, उसका अपने आप विनाश होगा। एक तो ऐसा गुरु मत करो, और यदि गुरु कर लिया उस समय जाना नहीं, अब समझ रहे हैं उसको तत्क्षणात छोड़ करके शुद्ध परमार्थी गुरु करो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सती जी ने सोचा हमारा अपराध हो गया, अब क्या करूं, उन्होंने सोचा अब इस शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं, इस शरीर को जला करके भस्म करके दूसरे शरीर में हम आकर के इनकी तपस्या करके फिर इनकी सेवा करेंगे, इस रूप में अब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सेवा तो करती रही 88,000 वर्ष के बाद में, जबकि वो समाधि से उठे तो फिर वही हरि कथा भगवान की लीला कथाएं तरह तरह की सुनाने लगे। और इसी बीच में एक दिन आकाश मार्ग से बहुत से विमान जा रहे थे, युग भी बदल गए, जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारी ये सब बहनें अपने पतियों के साथ में जा रही हैं हमारे पीहर में, पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया है, वो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, सबको बुलाया किंतु शंकर जी को और पार्वती जी को इनको सती जी को नहीं बुलाया। इनकी इच्छा हुई इसे मैं भी चलूं, मेरा मन नहीं लगता, पति से कहा शंकर जी से आप यदि आदेश दें तो अपने पिताजी के यज्ञ में मैं भी जाऊं, दो चार दिन रह करके फिर आ जाऊंगी। शंकर जी ने कहा बात तो अच्छी है किंतु देखो गुरु के यहां मित्र के यहां पिता माता के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं, किंतु यदि वो विरोध करता है तो मत जाओ, वो हमसे विरोध करता है, वो समझता नहीं है मुझे, हमको साधारण मनुष्य समझता है। जब किसी समय में देव सभा में वो गया, शंकर जी वहां पर बैठे थे, सारे देवता लोग उठ करके खड़े होकर के उसके पिताजी सती जी के दक्ष प्रजापति सब लोग उसको प्रणाम किया, किंतु शंकर जी उठे नहीं, इसने कहा से
पागल को, भूत पिशाच की पूजा करने वाले को अपनी कन्या का दान मैंने किया, जो पिता को भी सम्मान नहीं करना जानता।